আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সূরা আল বাকরা কি 254 নম্বর আয়াত আজ আমরা পড়েঙ্গে ইয়া আইয়ুল্লাযীনা আমানু আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া ইয়াউমুন লা বাইউন ফীহি ওয়ালা খুল্লা ওয়ালা শাফাআতুন ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন। اے ایمان والو، جو اللہ نے تم پر رزق عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی ظالم۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد اور جہاد کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دونوں مضمون چلتے رہے ہیں۔ یہاں اس مضمون کو ایک طرح سے کمال تک پہنچا دیا ہے کہ جامع طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اس بحث کو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دے کر اس گفتگو کو ختم کیا گیا۔ کیا ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ ہماری دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ایک ہمارا جسم ہے، کچھ عبادات اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو ہمارے جسم کی بدنی عبادات ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہماری صلاحیتوں پر بھی اللہ نے رکھی ہیں، تو ان کو ہم کسی موقع، مناسب موقع پر زیر بحث لے آئیں گے۔ مثلا اللہ کے دین کی خدمت کرنا، علم حاصل کرنا، اس طرح کی چیزیں یہ صلاحیتوں پر مبنی کر دی گئی ہیں۔ تو جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ مال ہو تو اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، صلاحیتیں ہوں تو اس کو خرچ کرنا، جسم ہے تو اس کو، اس کے ذریعے سے جدوجہد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جن کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری آتی ہے تبلیغ کرنا، جن کے اوپر دین کے علمی کام کی ذمہ داری آتی ہے وہ کرنا، جن کے اوپر تعلیم کی ذمہ داری آتی ہے، یہ سب ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ مال کے پہلو سے بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں یہ کام نہیں ہوں گے۔ تو گویا قیامت میں نجات کے ذریعوں میں سے ایک بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اس دن یہ جو مال خرچ کیا ہوگا یہ ہمارے کام آئے گا۔ جتنی نیکیاں ہیں وہ دو طرح سے کام آتی ہیں ہمارے، جتنی بھی نیکیاں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، تو یہ نیکیاں دو طرح سے ہمارے کام آتی ہیں۔ ایک تو ہمارے اعمال نامے میں نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتی ہیں کہ یہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ کوئی گناہ ہوا ہے اس کے بعد آپ نیکی کریں گے تو اس کو اعمال نامے میں سے صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جو انفاق ہے وہ بھی کام آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارے بہت سارے کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے گا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے نیکی کو سمجھنا چاہیے، ایک اس اعتبار سے کہ نیکی کرنے سے سیدھا سیدھا اجر ملتا ہے، دوسرا کام یہ کہ یہ کفارے کا کام کرتی ہیں۔ تو قیامت والے دن دونوں چیزوں نے کام آنا ہے، جو ہمارے کھاتے میں ثواب لکھا ہوا ہے وہ، اور جو کفارے ہو گئے، ہمارے گناہ جڑ دیے گئے جو اس کی وجہ سے، وہ چیزیں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کر لو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی۔ جو اس میں دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو 10 روپے دوں اور کہوں یار 5 روپے مجھے واپس کر دو، تو میں نے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، جو دیا تھا اسی میں سے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفیت ہے جو جملہ پیدا کرتا ہے، کئی مقامات پہ آیا ہے کہ ان میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہی جو اللہ نے دی ہیں وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود کوئی چیز بنائی ہے، خود کوئی چیز کمائی ہے، خود کوئی اس میں سارا کچھ ہمارا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے خود اپنا مال خود تخلیق کیا ہوتا, اپنی صلاحیتیں خود تخلیق کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مطالبہ بھی نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ میں نے ہی دیا تمہیں, تو اس میں سے اپنے غریب لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں, یا جہاد کے لیے مانگ رہا ہوں, یا کسی اور بڑے کام کے لیے. تو انفقو مما رزقناکم, اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کمائی کے خود خالق نہیں ہیں, ہم نے نہ وہ دولت بنائی ہے, نہ وہ نعمتیں بنائی ہیں, نہ وہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رستہ بند کر دیا تھا, لیکن میں نے خود اپنی قوت تخلیق کے ذریعے سے مال بنا لیا ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے, اس کے تحت مجھے اور آپ کو رزق ملتا رہتا ہے. آگے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی, کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. دنیا میں ہم کئی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں بیگ کے ذریعے سے, یعنی خرید و فروخت کے ذریعے سے. میرے پاس پانی نہیں ہے تو پانی خرید لوں گا, کھانا نہیں ہے تو کھانا خرید لوں گا. لیکن قیامت والے دن جنت خریدنی چیز نہیں ہوگی, اس دن جنت بکے گی نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو چلو خرید لو. اول تو پیسے ہی نہیں ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ وہ بکنے والی چیز بھی نہیں, وہ تو انعام ہے. تو انعام انہی کو ملے گا جو کامیاب ہو جائیں گے. ولا خلا, اور اس دن کوئی تعلق, رشتہ داری, کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کہے یار تم میری کرسی پر بیٹھ جاؤ, صبح سے کھڑے ہو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم میری جنت لے لو, میں تمہاری دوزخ میں چلا جاتا ہوں. کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ولا شفا, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. شفاعت کا مطلب ہے کہ میں نے سفارش کر دی کہ آپ بڑی مہربانی ان کا یہ کام کر دیجئے. تو کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو اس بندے کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے, کوئی نہیں کہہ سکے گا, اور کسی کی یہ بات مانی بھی نہیں جائے گی. والکافرون ہم الظالمون, تو فرمایا کہ یہ میں نے اتنا سخت قانون کیوں بنایا ہے کہ نہ کوئی تجارت ہو سکے گی اس دن, نہ کوئی دوستی رشتہ داری کام آئے گی, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. اس لیے کہ کافر ظالم ہے, اس لیے قانون سخت رکھا گیا ہے. ظالموں کے لیے کوئی نرمی نہیں, ظالموں کے لیے کہیں بھی نہ شفاعت ہونی چاہیے, نہ دوستی رشتہ داری فیورٹزم کام آنا چاہیے, نہ کوئی لین دین ہونا چاہیے کہ رشوت لے کر چھوڑ دیا. تو نہ وہ رشوت کا دن ہے, نہ وہ سودا کا دن ہے, نہ وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے, نہ کسی ڈیل کا دن ہے, نہ کوئی دعا تعلق اور دوستی نبھانے کا دن ہے, نہ کوئی شفاعت کا دن ہے. کیونکہ کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں. یہ اس دن کی بے لاگ جو انصاف ہونا ہے اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی جان کسی کا کام نہیں آئے گی, کوئی پیسہ کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی اور بھی مدد نہیں آئے گی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے. یہاں بھی تین چیزیں آپ کے کام آ جاتی ہیں, پیسہ کام آ جاتا ہے, دوستی کام آ جاتی ہے, تعلق, سفارش, اس طرح کی چیزیں کام آ جاتی ہیں. تو قیامت والے دن ان تینوں چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ خدا کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہوگا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ فاتحہ جب شروع کی قرآن مجید کا درس یہاں پہ, تقریباً سال پہلے کی بات ہے, تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں شکر تین باتوں پر ادا کیا گیا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, دوسرا یہ کہ وہ رحمان و رحیم ہے, اور تیسرا یہ کہ وہ مالک یوم الدین ہے. ان تین باتوں پر شکر ادا کیا گیا. تو مالک یوم الدین پر شکر کیوں ادا کیا گیا؟ وہ تو ڈرنے کی چیز. مطلب یہ تھا وہاں پر کہ مثال کے طور پر قیامت والے دن فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تینوں چیزیں استعمال ہو جائیں گی. پیسہ بھی قبول ہو جائے گا, رشوت بھی چلے گی, دوستی یاری بھی چلے گی, اور شفاعت بھی چلے گی. قیامت والے دن اگر یہ ہو گیا تو ظلم ہو جائے گا. جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, ہم پاکستان میں تو دیکھ رہے ہیں اب کھلی آنکھوں سے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اور ہمارے مقتدر حلقے کیا کرتے ہیں, کوئی عدل قائم نہیں ہونے دیتے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہو جانا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دے فیصلے کی, कि चलिए आप रजिस्टर ही तैयार कर दें पास होने वालों का जो जन्नत में जाएंगे, काम ख़राब हो जाएगा। वहाँ रिश्तेदारियाँ काम आ रही होंगी, शफातें हो रही होंगी, कुछ हो रहा होगा, और तुम तो अपने गांव के हो, क्यों मेरा नाम लिस्ट में डाल दो। ठीक है, तो शुक्र है कि उस दिन अदल करने का फ़ैसला सारा अल्लाह के इख्तियार में हो, वहाँ शुक्र अदा किया गया था। यहाँ उसका उलट बात कहे, बल काफिरुना हुम ज़ालिमून, कि ये सारे काम नहीं होंगे क्योंकि ज़ालिमों को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ालिमों को माफ़ कर दिया जाए। तो जिस इलाके में पूरा अदल हो वो इलाका काबिल शुक्र इलाका है, वहाँ रहना काबिल तारीफ़ रहना है। लेकिन जिस इलाके में ज़ालिमों को रिश्वतें देकर जान छूट जाती हो, दोस्तियाँ काम आ रही हों, उनकी शिफातें हो रही हों, तो वो ज़ालिमाना माशरा है, उसमें वो रहने के लायक नहीं है। अब यहाँ मेरे ख़्याल में एक मज़मून दोबारा मुकम्मल हो गया है। वो दोबारा मज़मून ये मुकम्मल हो गया है कि तुम लोग जिहाद जिसकी बात दावत दी जा रही है, तो ईमान वालों तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, और जिहाद बहुत ज़रूरी है, जिहाद के लिए भी खर्च करो और अल्लाह की राह में इन्फाक भी करो, क्योंकि ये कामयाबी के लिए लाजमी चीज़ है। और जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर करेंगे, कुरान का कुफर करेंगे, अल्लाह को नहीं मानेंगे और अल्लाह के मकासद के लिए उठकर खड़े नहीं होंगे, वो क़यामत वाले दिन भुगतेंगे नताइज को। आगे कुरान की मशहूर तरीन आयात में से आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी जो है वो हमारे यहाँ ज़िक्र के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि चंद लफ्ज़ों के अंदर बहुत मानी खेजी इसमें की गई है, और जो पहलू यहाँ वाजे किए गए हैं वो अगरचे शफात के पहलू से ही मजमून है, लेकिन खुदा का भी एक जामे तारुफ यहाँ होता है। अल्लाहु ला इलाह इल्लाहु, अल्लाह उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। अल हय्यु अल कय्यूम, वो जिंदा है और कय्यूम है। आपको याद होगा कि हमने पीछे 163 नंबर आयत था, गालबन 163 आयत में यही मज़मून था कि उसका आगाज़ हुआ था इस बात से कि शरीयत देने का हक़ सिर्फ अल्लाह ताला को है। तो उसका अल्फाज थे कि ला इलाहा इल्लाहु, तो शरीयत देने के लिए भी इलाह की ज़रूरत है, कि जो इलाह है वही शरीयत देने का हक़ रखता है। और यहाँ अब क़्यामत के पहलू से बताया कि क़्यामत वाले दिन जो फ़ैसले होने हैं उसका हक़ भी इलाह ही रखता है। तो चूंकि दुनिया में भी कोई इलाह नहीं है, आखिरत में भी कोई और इलाह नहीं है, तो सारे के सारे कानून जो शरीयत की सूरत में दुनिया में देने हैं वो भी अल्लाह का हक है, और जो क़्यामत वाले दिन फैसले करने हैं वो भी अल्लाह का हक है। तो अल्लाहु ला इलाह इल्लाहु अल हय्यु अल कय्यूम, पहली सिफत जो है वो हय्यु का मतलब जिंदा है और कय्यूम का मतलब कायम है। लोगों ने इसका दूसरा मतलब भी किया है, जो जिसके ज़रिए से बाकी चीज़ें, यानी खुद भी कायम है और चीज़ों को भी कायम रखे हुए हैं, ये दोनों माने इसके किए गए। लेकिन जिस सियाको सबाक में ये आई है इसमें लाजिम मानी लेना असल चीज़ है, बाकी मैं वजाहत करता हूँ कि क्या है। अल्लाह ताला जिंदा है और अल्लाह ताला कायम और दायम है। कय्यूम के अंदर मुबालगा होता है, तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्लाह ताला बेनफ़से ही कायम है, बेजाते ही कायम है, उनको कायम होने के लिए किसी खाने पीने की, किसी के सहारे की, किसी की तख्लीक की ज़रूरत नहीं है, बस वो कायम। अब जो कायम है और जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी ने उसको तख्लीक नहीं किया है, तो आपसे आप इसके अंदर मतलब ये पैदा हो गया कि वो अज़ल से है, अल्लाह ताला का कोई आगाज़ नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है, बल्कि यूम और कोई मौत नहीं है। तो अलहई और कयूम दोनों सिफात मिलकर ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला मौजूद रहेगा और ज़िंदा रहेगा। अज़ल से मौजूद है, अज़ल से ज़िंदा है, और ता अबद ज़िंदा रहेगा और मौजूद रहेगा। अब मैं एक बात अपने जो अरबी जिनको पढ़ाता हूँ अरबी अदब, तो उसमें मैं बताया करता हूँ कि कलाम का एक मुकद्दर होता, तो मैंने यहाँ भी कई दफ़ा मिसाल दी है कि मैंने कहा कि भाई चाय पी की है, तो इस जुमले का मुकद्दर यह है कि चीनी लाई जाए। ठीक है, मैं कहीं मेहमान गया हूँ तो जाकर कहूँ यार चाय पी की है, तो मेज़बान कहेगा जी मैं अभी लाता हूँ चीनी, डालना भूल गया हूँ या कुछ जो भी है। अब वो चीनी लेकर आएगा, गोया मैंने सिर्फ जुमला बोला था कि चाय फीकी है और मेज़बान ने समझा कि मैं चीनी मांग रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही जब अल्लाह ताला ने कहा कि वो अजल से ज़िंदा है, अजल से मौजूद है, अबद तक ज़िंदा रहेगा, अबद तक मौजूद रहेगा, तो इसका एक मुकद्दर है कि अल्लाह ताला से जान नहीं छूट सकती। मैं नेगेटिव जुमला काफिरों की वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह से जान छुड़ा लोगे। कोई नहीं, अल्लाह ताला ने 100 साल अल्लाह ताला माफ़ करे, बाद में होना नहीं है, ठीक है, जान छूट जाएगी। खुदा से जान नहीं छूट सकती, वो अजल ताबत रहेगा, मौजूद भी रहेगा, जिंदा भी रहेगा। तो ये जो मानी है इसके अंदर, इसका मतलब है कि तुम्हारे मुकदमात, तुम्हारे जराइम, तुम्हारे नेकियां सब कहीं निजात पाने वाली नहीं है, वो खुदा के सामने लाजमन जाएंगी। अब कोई आदमी ज़िंदा हो और कोई मौजूद हो, लेकिन ज़िंदा चीज़ें सो भी तो जाती हैं, तो कोई नहीं, अल्लाह ताला सो जाएंगे तो फिर कोई शरारतें कर लेंगे। फरमाया कि ये भी मौका नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है ना उसको, तो दोनों गफलत की चीज़ें बयान कर दी कि अल्लाह ताला ज़िंदा हैं, मौजूद हैं और गाफिल भी नहीं हैं। उनको ना नींद आती है, ऊँग भी नहीं आती, नींद आना तो दूर की बात है, ऊँग भी नहीं आती। अब इसका जो मुकद्दर है वो ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ को निगाह रखे हुए हैं, हर चीज़ पर देखने वाले हैं, कभी गाफिल नहीं होते, तो तमाम चीज़ें उनके इल्म में हैं। आदमी सो जाएगा तो हो सकता है आपको चीज़ें इधर उधर कर दें, लेकिन जब वो सोया ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो एक ऐसी ज़ात जो मुस्तकिल तौर पर ज़िंदा है, जो मुस्तकिल तौर पर कायम और दायम है, जो मुस्तकिल तौर पर नींद से पाक है, उस ज़ात के आगे तुम्हारी चलेगी क्या? निजात पाने का रास्ता क्या तुम्हारे लिए? लाजमन पकड़े जाओगे, क्योंकि खुदा जायल होने वाले नहीं हैं, खुदा गरूब होने वाले नहीं हैं, खुदा को मौत नहीं है, हय्युन ला यमूत। तो एक ऐसी हस्ती से तो हम समझ सकते हैं कि जान छूट जाएगी, मतलब किसी के वाले साहब सख्त गिर हों, किसी की सास सख्त गिर हो, ससुर सख्त गिर हो, तो कहें चलो कोई नहीं 10-20 साल इंतज़ार कर लेते हैं, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा तो जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ऊपर ये जो बात कही थी कि तुम्हारी कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई रिश्वत काम नहीं आएगी, कोई शफात काम नहीं आएगी, अब यहाँ ये मज़मून आगे बढ़ाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अकेले इलाह हैं, दुनिया में भी वो अकेले इलाह हैं, और वो ऐसे इलाह नहीं हैं कि कभी जान छूट जाएगी जैसे तुम्हारे देवता हैं। कई बुज़ुर्ग फौत हो गए, कई टूट फूट गए, सूरज डूब गया, चाँद डूब गया, सितारे डूब गए, तो तुम्हारा खुदा ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे नहीं है, और वो कभी गाफिल भी नहीं होते। तो ये खुदा की जो सिफात हैं, ये जुमले का भाव ये बता रहा है कि इसी मानी में लेना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे मुफस्सरीन ने कयूम के मानी मुतद्दी लिए हैं, लाजम नहीं मुतद्दी लिए हैं। मुतद्दी का मतलब होता है कि उसका कोई मफूल बनाया है। फिर हमारे मुफस्सरीन ने दो मानी बयान किए हैं, एक कयूम अला कुल्ले शय और एक कयूम बेकुल्ले शय, दो मानी बयान किए हैं। कयूम अला कुल्ले शय का मतलब है कि वो हाकिम है, निगरान है, हर चीज़ के ऊपर उसकी हुकूमत चलेगी, और कयूम बेकुल्ले शय का मतलब होगा कि हर चीज़ करने वाला वही है, सारी चीज़ों की तदबीर उसी के हाथ में है, सारी प्लानिंग, सारी प्रोविज़न, जो कुछ दुनिया में चाहिए फ्राहम करने वाला वही है, जो कुछ हो रहा है करने वाला वही है। तो ये मानी का इनकार नहीं है, लेकिन कलाम का बहाव पहले मानी तक चाहता है कि कलाम को पहले समझा जाए, फिर हय्यु कय्यूम जो ज़िंदा है वो ज़िंदगी दे भी रहा है, वो एक अलग मज़मून है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना मज़मून है कि वो कभी मरने वाला नहीं है, ना कभी उसका कोई आगाज़ हुआ है, ना उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म होने वाली है, वो कायम और दायम है, हय्यु कय्यूम है, और उसको ना नींद आती है ना ऊँग आती है। तो कोई लम्हा गफलत का नहीं है, कोई लम्हा अदम मौजूदगी का नहीं है, तो तुम उससे निजात कैसे पा सकते हो? उसका सामना करना ही करना होगा। लहू माफ़ السماوات و माफ़ الارض, सारी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उसी की हैं, मालिक वही है। अब ये जो जुमला है ये बड़ा धमकी आमेज़ भी है, और जो लोग अल्लाह को मानने वाले हैं उनके लिए बशारत भी है इसमें कि हमारा वास्ता किसी ऐसे खुदा से नहीं है कि जो सिर्फ़ बारिश का खुदा है, जो सिर्फ धूप का खुदा है, नहीं, हमारा मामला एक ऐसी हस्ती से है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, पूरी कायनात में जो कुछ है वो उसी का है, बनाया उसी ने है, चला वही रहा है, हाकिम वही है, हर चीज़ उसी की बात मानती है। तो अगर उसने दोज़ख को कह दिया कि इनको झुलसा दो तो झुलसा देगी, ज़मीन व आसमान को कह दिया कि सब कुछ तबाह कर दो तो कर देंगे, तो तुम बच कर जाओगे कहाँ पर? कहीं नहीं जा सकते। यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा, यानी अगर हज़रत मूसा के मौजज़ा देखिए तो ये जो पानी और ये जो हवाएं, ये साजगार चीज़ें, ये हमारे लिए क़यामत बन जाती थी। पत्थर, हवा, जो तूफ़ानी बारिश आई कौम लूत वगैरह पर, तो किस तरह से आई है हम जानते हैं कि वही हवाएं जो बारिशें लाती हैं, वही हवाएं वो तूफ़ान बन जाती हैं, अजाब बन जाती हैं। तो ज़मीन व आसमान सारा का सारा उसी का है, तो तुम कहाँ, किसका सहारा लोगे, कहाँ पनाह लोगे, कहाँ भाग कर जा सकते हो? कहीं नहीं। तो पूरी कायनात उसकी है, तो तुम समझ रहे हो कि इलाह को हम गच्चा दे लेंगे, बच जाएंगे, कुछ धोखा दे कर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो चुनाचे ये पूरी तफसील करने के बाद फरमाया, मंजल्लाजी यशफा इंदा, अब बताओ कि ज़मीन व आसमान में से कौन है जो खुदा के सामने शफात कर सके, कोई है? वो इन चीज़ों का मालिक, तो ममलूक और ग़ुलाम शफात कैसे कर सकते? किसकी ज़रूरत होगी कहे जनाब आपका फ़ैसला गलत है, किसकी ज़रूरत होगी कहे कि जनाब मैं जानता हूँ आपको नहीं पता, ज़रा इसको माफ़ कर दीजिए, किसकी ज़रूरत होगी? तो ये आयतुल कुर्सी है, बहुत सख्त आयत है, और ज़ाहिर है कि खुदा के उस दैनूनत का जो क़यामत वाले दिन सादिर होनी है उसका नहायत खरा खरा बयान है। तो अल्लाह के सिवा कोई ला नहीं है, वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा से कायम व दायम है, उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँग नहीं आती, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो उसका है। तो अब बताओ बच कर कहाँ जाओगे, कौन सी चीज़ पनाह देगी, कौन सी चीज़ शिफात करेगी? चुनाचे उसको खोल भी दिया, मंजल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने शिफात कर सके? ममलूक हैं सारे, जितने अंबिया हैं, जितने रसूल हैं, जितने औलिया हैं जिनका सहारा लोग लेते हैं, जिन्नात हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? खुदा की मखलूक है। तो मखलूक की क्या ज़रूरत है कि वो आगे बढ़कर कोई शिफात कर सके? हाँ अलबत्ता इल्ला बेस नहीं, अल्लाह ताला जिसको इज़न दे दे, तो अल्लाह के इज़न के बग़ैर कोई काम नहीं होगा। इज़न जो है कुरान मजीद का बहुत अहम इस्तलाह है, इसको हमेशा गौर करते रहना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि जो बातें हम कर रहे होते हैं मौलिम के तौर पर, वो ज़रूरी नहीं होता कि खामी से पाक हों, हम इंसान हैं, कोई पहलू रह जाता है, कोताही हो जाती है, तो गौर करते रहना चाहिए। अल्लाह के इज़न का मतलब ये होता है कि यानी इसमें एक होती है तौफीक, एक होती है मोहलत, ये भी अल्लाह का इज़न है, लेकिन एक इज़न का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला खुद हुक्म देते हैं तब वो काम होता है। जैसे मौजज़ात के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि हज़रत ईसा बेइज़्ने ही अल्लाह के इज़न से मिट्टी को लेकर उसकी वो मूर्ति से बनाते थे, फिर अल्लाह के इज़न से उसमें फूंक मारते थे तो जीता जागता परिंदा बन जाती थी। दोनों काम अल्लाह के इज़न के बगैर नहीं होते थे। तो अल्लाह के इज़न, अगर मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किसी वक्त किसी मिट्टी की लेकर मूर्ति बना देते परिंदे की शक्ल की और उसमें फूंक मारते तो कुछ ना होता, कुछ नहीं होना था। दरिया के किनारे जब हज़रत मूसा ने असा उनके हाथ में था, ख़ुद असा मारते, कुछ नहीं होना था। अल्लाह का हुक्म आया कि अब असा मारिए, 12 चश्मों के लिए हज़रत मूसा ख़ुद असा मारते, कुछ नहीं होना था। हुक्म आएगा तो 12 चश्मे फूटेंगे। तो यहाँ भी यही फरमाया कि کوئی زبان نہیں کھول سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ زبان کھولنے کی اجازت دے دیں. شفاعت کے بارے میں ہمارے پاکستان میں جو تصور ہے بڑا غلط قسم کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی شفاعت کر سکیں گے, اور بلکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ شفاعت تو گناہ گاروں ہی کی ہوتی ہے, نیک لوگوں کی تو نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کی شفاعت کریں گے. دو تین باتیں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے. کوئی آدمی کسی بدماش کے ساتھ, نیک آدمی, صالح آدمی, نمازی, پرہیزگار, با اخلاق, باشرہ آدمی, کیا کسی بدماش کی تھانے میں ضمانت کروانے جائے گا؟ بتا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کے رسالت کی شان کے خلاف ابو جہل کی شفاعت کرنے چلے جائیں؟ کیسے ہو سکتا؟ دوسری بات, اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گناہ گاروں کی کریں گے, تو بلا شبہ گناہ گاروں کی کریں گے, لیکن میں بتاتا ہوں کہ کن گناہ گاروں کی کریں گے. تو اگر شفاعت ہی سے سارے معاملات ہونے ہیں تو جنت دوزخ کے قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آ جا کے چند لوگ رہ جائیں گے نا, ابو جہل, ابو لہب, فرعون اور نمرود, یہی لوگ رہ جائیں گے جن کو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ دوزخی ہیں. تو ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب لوگوں کو نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس نبی شفاعت کر دیا کریں. تو قرآن کا جو پورا اصول ہے قیامت کا, وہ برباد ہو جاتا ہے. تو شفاعت کا کوئی ایسا نظریہ نہیں مانا جا سکتا جو قرآن کے اس مقدمے کو خراب کرتا ہو کہ قیامت ہونی ہے اور اس دن حق و انصاف ہونا ہے. تو شفاعت کا کوئی ایسا نظریہ نہیں مانا جا سکتا جو قیامت کے نظریے کو باطل کرتا ہو, عدل کے نظریے کو باطل کرتا ہو, وہ نہیں مانا جا سکتا. اب آ جائیے قرآن مجید میں جو شفاعت کا نظریہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے اذن سے کوئی بول سکیں گے, اور ایک مقام پہ کہتا ہے لمن یشاء, جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کے لیے بولا جائے گا. تو مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے گی کہ آپ بولیے, لیکن جس کے بارے میں بولنے کی اجازت ملے گی اس کے بارے میں بولیں گے. پہلے یہ کہ آپ اس وقت شفاعت کر سکیں گے جب آپ کو بولنے کی اجازت ملے گی, پھر دوسری بات یہ کہ جس کے لیے بولنے کی اجازت ملے گی اس کے لیے بولیں گے, اور تیسری بات یہ کہ سچ کہیں گے. کالا ثواب سورہ نبا میں جا کر بیان کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکے گا جی یا اللہ آپ کو نہیں معلوم ہے, اس کو معاف کر دیجیے, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکے گا. تو شفاعت صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کے بارے, پہلی بات یہ کہ بولے گا صرف وہ ہستی بولے گی جس کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. دوسری بات یہ, اگر اجازت نہیں ملی تو شفاعت نہیں ہوگی, اور بولنے کی اجازت مل گئی لیکن جس کے بارے میں ملے گی اسی کے بارے میں بول سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملے. تو اس شفاعت پر کیسے انحصار کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر مخدوش ہے کہ پتہ نہیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تیسری چیز یہ کہ جس کو اجازت ملے گی بولنے کی, جس کے بارے میں بولنے کی اجازت ملے گی, کالا ثواب, وہ سچی بات کہے گا, درست بات کہے گا. وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, وہاں کوئی بل فریب نہیں دیا جا سکتا, وہاں کوئی الٹی سیدھی بات کر کے دھوکہ دے کر نجات نہیں دلوائی جا سکتی. یہ تین شرطیں تو ہو گئیں وہ کہ شفاعت کرنے والے اور جن کی ہونی ہے ان کی کیا صورتحال ہے. اب سورہ آل عمران میں اور سورہ توبہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ, بعض صحابہ جن سے کوتاہی ہو گئی تھی, ان کو کہا گیا, کچھ منافقانہ یا کمزور قسم کے جو مسلمان تھے ان کو پھر کہا گیا کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی جا کر کہے کہ وہ آپ کے لیے استغفار کریں. وہاں سے یہ شفاعت کا ہندیہ ملتا ہے کہ رسولوں کی جو شفاعت ہوگی وہ استغفار کی نوعیت کی ہوگی کہ یا اللہ آپ اپنی مرضی سے اپنے قاعدے قانون کے مطابق ان کو معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کی بھی ہے. حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا یہ تم ہو کہ جس نے کہا ہے کہ میری ماں اور میں دونوں خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے آگے سے کہا کہ ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। हज़रत ईसा ने जब वो पूरी बात बता दी कि मैं तो गया तो मैंने वही कहा जो मेरे शायान शान है, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जो मेरे शायान शान नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ये आपके बंदे हैं, चाहें तो आप इनको सजा दें, चाहें तो इनको माफ़ करें। ये शफात है, यानी उन्होंने अपनी कौम की शफात की है, अपनी मिल्लत की, लेकिन ये कहकर कि ये आपके ऊपर है। तो एक शफात उनकी भी है। अब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आप सारी समझ जाएं कुरान में जितने भी इस तरह के मौक़े हैं, तो आपको ये बात वाज़े हो जाएगी कि कुरान मजीद के मुताबिक ऐसी शफात का कोई मफहूम पूरे कुरान मजीद में नहीं है कि आप ये कहें कि उधर रसूल खड़े होकर कहेगा कि जी बस आप माफ़ कर दीजिए तो माफ़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। बल्कि अंबिया सलीके के साथ, अदब व एहतराम के साथ अल्लाह ताला से अपनी बात कहेंगे, और वो जो बात है वो कहने के बाद बिल्कुल वो अपने अदब, अपने मकाम मर्तबे के एतबार से बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि वो खड़े होकर बस कह दें जी माफ़ कर दीजिए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं। तो इस तरह से अंबिया की शायान शान जो बातें हैं उसके मुताबिक और कुरान मजीद में जो कानून बयान किया गया है उसके मुताबिक ही शफात होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए दुनिया में शफात इस्तग़फार करते रहे और आखिरत में भी उनको एक इस्तग़फार का मौका दिया जाएगा। जिसके लिए दिया जाएगा बस उसी के लिए दिया जाएगा, बाकियों के लिए नहीं। अलबत्ता ये बात कानूनी तौर पर वाज़े रखनी चाहिए कि शफात उन्हीं को नसीब होगी जो दुनिया में अगर गुनाह हुए तो इस्तग़फार करने वाले थे, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि जाकर नबी से इस्तग़फार कहो, बल्कि ये कहा गया कि खुद भी इस्तग़फार करो और नबी से भी दरख्वास्त करो कि तुम्हारे लिए इस्तग़फार करें। अब आगे दो बातें ऊपर चल रही थी, अल हय्यु अल कय्यूम, यानी अल्लाह ताला हमेशा रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हय का मतलब है हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अल्लाह ताला को मौत नहीं है। कय्यूम का मतलब है कि अल्लाह ताला कभी ज़ायल नहीं होंगे, कभी गुरूब नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा कायम रहेंगे और हमेशा बेदार रहेंगे। हर वक्त पहरे ज़िंदा है, हर चीज़ अल्लाह की निगाह में हो रही है, कभी भी अल्लाह ताला नहीं सोएंगे कि कोई बात उनकी निगाह से ओझल हो गई, गफलत में गुजर गई। और उसके बाद अगली बात जो इन दोनों के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो मुकद्दर बात है वो ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। तो चुनाचे फरमाया कि यालमु मा बैना आईदिहिम व मा खल्फहुम। तो जो लोग शफात जिनके बारे में हो रही होगी या शफात करने वाले हैं, फरमाया कि उनके आगे पीछे की सारी बातें अल्लाह ताला जानते होंगे, उनका माजी भी, उनका हाल भी, उनका मुस्तकबिल भी अल्लाह ताला जानते हैं। कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं है। तो शफात करने वाले का कोई फ़ायदा होगा कि अल्लाह के इल्म में इजाफ़ा कर दें, यानी हम थानेदार का जाकर इल्म में इजाफ़ा करते हैं, जनाब आप गलती से पकड़ लाए हैं, ये तो फलां का बेटा है, ये इसके कारनामे ये हैं, ये तो शरीफ आदमी है, किसी ने तोहमत लगा दी आप पकड़ लाए हैं, तो हम उसके इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह के इल्म में क्या इजाफ़ा करेंगे। चुनाचे जुमले देखिए कितने ज़बरदस्त है कि यालम मा बैना आईदिहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह ताला उनके आगे पीछे अंदर बाहर दिल दिमाग सब हालात को जानते हैं। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, जबकि अल्लाह के इल्म में से वो कुछ भी अहाता नहीं कर सकते। अल्लाह के इल्म को तो नहीं जानते। हज़रत ईसा का जुमला भी ऐसा ही है जो जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया कि उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, लेकिन आप मेरे दिल के हालात जानते हैं। वो बिल्कुल कांप उठे जब उनसे कहा गया ना कि भाई तुमने अपनी माँ को और अपने आप को खुदा बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप मेरे दिल के हालात जानते हैं, मैं नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। यानी उनको खबर ही नहीं है कि उनकी उम्मत ने उनको खुदा बना लिया हुआ है, खुदा का बेटा बना लिया हुआ है। तो यहाँ उसी बात को बयान किया है कि जो लोग हैं जो शफात करने वाले हैं या जिनके बारे में शफात की जाएगी, वो तो मेरे इल्म में से कुछ भी नहीं जानते, मैं उनका सब कुछ जानता हूँ, तो शफात क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना अल्लाह के इल्म में इजाफ़ा, ना अल्लाह की गलती दूर होगी। कि एक गलत बात अल्लाह नौजबिल्ला मालूम है, गलती दूर कर दी, ये हो सकता है, वो भी अल्लाह के यहाँ कोई गलती नहीं है, और इल्म में कमी कोई नहीं, क्या आप इल्म को कमी दूर कर दें। तो वो अल्लाह ताला ने बयान किया, ये जो अरबी का मुहावरा है इसको समझ लेना चाहिए। यही तो ना बेशैन में इल्म ही, ये अरबों का मुहावरा है, अहातबे इल्म का मतलब होता है अहातबे शहीन इल्मन, अच्छी तरह से चीज़ को जानना, अच्छी तरह से चीज़ को समझना। ये पुराने ज़माने में सिर्फ इमाम शाफ़ी या उनके ज़माने के जो लिखने वाले हैं उनके यहाँ ये मिलता है, बल्कि इमाम शाफ़ी ने इसके दो इस्तलाहें बनाई इसी मुहावरे से, इहातत शही ज़ाहिरन और इहातत इल्म बातिनन। इसका मतलब ये होता था कि एक आदमी चीज़ को ज़ाहरी तौर पर भी जानता है और उसकी हकीकत को भी जानता है। तो मिसाल के तौर पर हमने अदालत में फ़ैसला किया कि ये साहिब चोर हैं, दो गवाहियों ने गवाही दे दी, तो ज़ाहरी तौर पर तो हमने जान लिया कि चोर हैं, लेकिन क्या हकीकत में भी चोर हैं ये नहीं जाना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया कि मैं तो उनकी एक एक चीज़ को जानता हूँ जो आगे पीछे है, मख्फी है, ज़ाहिर है, लेकिन वो मेरे इल्म का इहाता ही कोई चीज़ का इहाता नहीं कर सकता, किसी चीज़ को नहीं जान सकते कि मेरे पास क्या क्या मालूमात है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क़यामत वाले दिन मेरा क्या प्रोग्राम है, मेरा क्या इरादा है, किसको मैंने माफ़ करना है, किसको मैंने पकड़ना है, ये तो नहीं जानते। इल्ला बिमाशा, हाँ जितना अल्लाह ताला बता दें बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अब ये ज़ाहिर है कि मज़ीद बात में सख्ती पैदा हो गई है कि खुदा की जो कहार होना है, खुदा का जो क़्यामत वाले दिन मालिक होना है फ़ैसला करने का, वो कोई सादा बात नहीं है, उसके पीछे खुदा की ये सिफात है। वासिया कुर्सी हो समावाती वल्लर्स, अल्लाह ताला की कुर्सी ज़मीन व आसमान पे फैली हुई है। कुर्सी से हमारी वो चीज़ जहन में आती है जिस पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त, तो लेकिन कुर्सी बोलकर इकतदार मतलब होता है, हमारी ज़ुबान में भी होता है। पाकिस्तान में तो कुर्सी की जंग लड़ाई जारी रहती है, तो मतलब हुक्मरानी की। तो अल्लाह की हुक्मरानी तमाम ज़मीन व आसमान पर फैली हुई है, हर हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, हर हर चीज़ का इहाता उसके हाथ में है, और इन दोनों की हिफाजत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह को थकाती नहीं है। तो ये ना ख्याल करो कि क़यामत वाले दिन तुम ज़मीन व आसमान में से कोई चीज़ पकड़ कर ले आओ खुदा का मुकाबला करने के लिए, या ये ख्याल कर लो कि अल्लाह ताला कोई चीज़ थका देगी, क़यामत वाले दिन फैसला करते करते थक जाएंगे, या ये बात कि दुनिया में जो अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हैं तो ये किस दिन कोलैप्स कर जाएगी और अल्लाह ताला नजात हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ताला को कि मैं कहाँ हूँ। बाद लोगों का ये ख्याल होता है इतनी अरबों की आबादी है, अल्लाह को मेरा पता नहीं ख्याल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फरमाया कि नहीं, ज़मीन व आसमान पर उसकी बादशाहत फैली हुई है और इन दोनों की हिफाजत उसको थकाती नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला की थका देने वाला हो। तो अल्लाह ताला की कुव्वतें कुदरतें इतनी ज़्यादा हैं कि क़यामत वाले दिन सारे फ़ैसले कर देंगे। दुनिया में भी जितने काम हैं वो अल्लाह ताला कर रहे हैं, एक एक चीज़ को वो चला रहे हैं, कोई चीज़ उसकी खुदा की गिरफ्त में से बाहर नहीं है और कोई चीज़ उसको थकाने वाली नहीं है। इसलिए क्या हुआ अलीउल अज़ीम, कि वो बहुत बुलंद आला हस्ती है और बहुत अजमत वाली है, उसके यहाँ गुंजाइश ही गुंजाइश, कुव्वतें ही कुव्वतें, अजमत ही अजमत है, कोई पहलू उसके यहाँ नक्श का नहीं है। और अली का लफ्ज़ जो है वो पिछली पूरी बात के लिए करीना है कि अल्लाह ताला की ये कुदरत ये बादशाहत कोई छीन नहीं सकता, कोई खुदा को डरा नहीं सकता, कोई खुदा को कमज़ोर नहीं कर सकता, कोई खुदा को नौज़ बिल्ला जान से मार नहीं सकता, कोई उसकी कयूम होने को ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसलिए तुम्हारा वास्ता एक ऐसी हस्ती के साथ है जो हय्यु कयूम है, नींद उसको नहीं आती, ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें उसकी हैं, तमाम ज़मीन व आसमान पे उसकी बादशाहत है, वो ना थकता है ना वो सोता है, इस खुदा का तुम्हारे साथ मामला है। तो ज़रा होशियार हो जाओ, खाली वहम के ऊपर, छोटे छोटे ख्यालात के ऊपर कि हम ये कर लेंगे शफात हो जाएगी बच जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनवा लेंगे, फरिश्ते मना लेंगे जैसे कुरैश मानते थे, हमारे औलिया हमारी शफात कर देंगे, हमने अपने बाबा जी को राज़ी कर रखा है, वो अल्लाह ताला से बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کی جو شان ہے وہ آپ نے محسوس کر لی ہوگی کہ ایک ہی آیت کے اندر پورا درس کا ٹائم نکل گیا ہے، لیکن ابھی میں نے ہلکے ہلکے سطحی سی باتیں جو سمجھ آ رہی تھی ان کو عرض کر دیا ہے. آگے اب دو ایک منٹ ہیں، ہم اگلی آیت شروع نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.